میدان میں ذرا اس بزرگوار کو کپنا دوں، رامین کی جان کی قسم اگر یہ مشین بابا کو ایک سکے کا بھی فائدہ دے دے پھر تم بولنا۔
میں خود جاویدیان صاحب کا خادم ہوں، یہ دکان بغیر رنگ چھونے کے مجھے دی ہے، آپ کے گھرانے کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔
بھائی جان آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دو منٹ رکے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ السلام علیکم دینا صاحبہ۔
ارے شاہین صاحب آپ ہیں، میں کس کی جاننے والے کو ڈھونڈ رہی تھی۔
آپ کی مرضی محترمہ، جاننے والا کیا ہوتا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کی اپنی مارکیٹ ہے، خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ۔ امی اور بابا کیسے ہیں؟
سلام کہا ہے انہوں نے آپ کو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ صرف یہ گزارش ہے کہ کبھی آتے جاتے غلطی سے کبھی ہمارے گھر کا بھی چکر لگا لے کیجیے۔
میں نے اپنے کزن سے یہ سیکھا ہے کیونکہ وہ بھی سال کے 12 مہینے میں ایک بار بھی ہم امیروں کے یہاں نہیں آتے۔
بہت خوب بہت خوب، اچھا جواب دیا آپ نے۔ ویسے بلا تکلف میرے بابا اور امی آپ کی خبر لینا چاہتے تھے، یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔
میں بہت شرمندہ ہوں، ایدی آنٹی کی خیر پوچھنے کے لیے ہی صحیح، لیکن چکر ضرور لگاؤں گی آپ۔
جی ضرور ضرور، انتظار رہے گا آپ کا۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جتنے عرصے آپ نہیں تھیں اس دوران بابا اپنی انجینئرنگ میں مصروف تھے، اور رامین اس چکر میں ہے کہ انشاءاللہ اپنے لیے کوئی سلسلہ بنا کے چلا جائے۔
اپنے لیے
مارکیٹنگ آفیسر ایسی فضولیات ہے نا، اگر حقیقت پوچھیے تو وہ چاہتا ہے کہ یہاں کے سارے بگڑے ہوئے کام میری گردن پہ ڈال دے اور خود بھی سے نکل جائے۔
کون سے بگڑے کام؟
یہاں کے تاروں کا کام اور نقش و نگاری رامین صاحب کے زیر نظر ہوا ہے، جو کہ ذرا سا خراب لگ رہا ہے، تو بابا نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ شاہین صاحب اگر ممکن ہو سکے تو کچھ وقت نکال کے مارکیٹ کا چکر لگا لیا کرو اور خلق خدا کے معاملات کو بھی نپٹاؤ۔
خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ وہ دادزرے کی دکان
فزکس وغیرہ کہاں تک پہنچی آپ کی؟ اب تو آپ کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے نا؟ بہت خوب بہت خوب،
خبریں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، میں چچا نے آپ کو بتایا ہوگا نا؟
جیسی آپ کی مرضی دینا صاحبہ، ہم تو ان باتوں سے بالکل بری ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد پھر اپنے چوڑ کی تلاش اور شادی ہے نا؟ البتہ جسے آسمانوں میں ڈھونڈ رہی ہیں وہ ایک دن آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔
نہیں روزے میں جھوٹ کیوں بولوں، جیسے شخص کی تلاش میں ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے سامنے فی الحال آنے والا ہے، شاید اپنی پڑھائی کو ڈاکٹریٹ کے لیے جاری رکھوں۔
شاید وغیرہ کا کوئی حل نہیں ہوتا دینا صاحبہ،
اجازت دیجیے کہ میں اپنے دادا جان سے ملنے کے لیے جاؤں۔
ارے اتنی جلدی کیا ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے دادا جان سے کہیے گا کہ صرف حکم کریں۔
بہت شکریہ۔
ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟
32.5 صرف بعد والے سامان کے لیے بنتے ہیں، صرف آپ کے لیے۔
سلامت رہیے، ممنون ہوں آپ کا۔
بہت شکریہ،
خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
پینسٹھ تومان۔
اب انہی باتوں کا دور رہ گیا ہے، آگے آدھے گھنٹہ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں صرف آپ کے لیے، اور بلا نسبت آپ کے خون کی قیمت لے کے چلے جاتے ہیں۔
غیبت مت کرو رزے میں۔
استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟
یہ ہے تو قرآن، بظاہر اسے مرمت کے لیے لائے ہیں۔
مرمت کے لیے؟
ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ وہی آئینہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔
آپ مذاق کر رہے ہیں؟
جو نوجوان اس کتاب کو لے کر آیا تھا میرے سر گھمانے تک جا چکا تھا۔ جب وہ دکان تک آیا تھا اس وقت میرے ہاتھ پہ کیل اور ہتھوڑی تھی۔ جس قدر یہ واقعہ میرے دل کو روشن کر رہا ہے اتنا ہی یہ دکان مجھے تھکا رہی ہے۔
آپ اسے رنگ نہیں کروانا چاہتے
کیا؟ بقول تمہارے اس خون کی قیمت سے اگر تم اپنی دکان پر کوئی خرچہ کرنا چاہتی ہو تو میں منع نہیں کروں گا۔
دادا جان میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے آپ ناراض ہو جائیں گے، پہلے وعدہ کریں کہ ناراض نہیں ہوں گے۔
کیا؟
پہلے وعدہ کریں۔
فرض کرو وعدہ کر لیا، یہ مجھے تو۔
جی نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، جا کے وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ طے ہے کہ میرے منہ میں خاک، آپ کے بعد یہ دکان مجھے ملے تو مجھے اس میں سے ایک اینٹ بھی نہیں چاہیے۔ میرے سر پہ شریعت کی ٹوپی بھی نہ پہنائیں، کہ یہ ایک فرض ہے۔
محمود نے تمہیں کچھ کہا ہے؟
دادا جان آخر آپ کب جا کے یقین کریں گے کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں؟ اب 100 دفعہ کہہ رہی ہوں اور انشاءاللہ یہ آخری بار ہوگی کہ مجھے میرے مرحوم باپ کے ورثے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو میں کل کلا کو اپنی پڑھائی کی بدولت ایک فزکس کی ٹیچر تو بن سکتی ہوں، اور یہ انبیاء کا مشغلہ بھی رہا ہے، اگر میں کر لوں گی تو کیا ہے؟
کنارہ کش ہوگی یہ نہ سوچنا کہ میں اس طرح ہلکا پڑ جاؤں گا۔
دادا جان
کیا تم یہاں ہو جو میرے دل پر گزر رہی ہے اس سے واقف ہو سکو؟ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ मैं ये जानते हुए भी जी रहा हूं कि मुझे अपनी जिंदगी के हर दिन में एक और चीज खोनी पड़ेगी। अगर तुम मेरी जिंदगी का आखिरी सरमाया हो और मेरी आखिरी उम्मीद हो तो अब तुम भी मुझे ना उम्मीद करोगी। आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं एक ऐसी बीवी और बेटा रखता था, उनका साथ मांगता था और दुनिया ने उन्हें मुझसे छीन लिया, और अब मेरे पास वो बीवी और बेटा है जिन्हें मैंने खुदा से नहीं मांगा था मगर दुनिया ने मुझे दे दिए। जाओ अपने नखरे किसी और को दिखाओ, क्योंकि तुम मुझे ना उम्मीद करने के जरिए ना शुक्रा नहीं बना सकती।
दादाजान, मैं कोई आपका शैतान नहीं हूँ जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप खामखा ही इतना रंजिदा हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप जो अकरम जैसी सादलो और तो महमूद जैसे बेकार शख्स को ऐसी बातें कर रहे हैं, ये खुद ना शुक्रापन है। दूसरी बात यह है कि अब जरा महमूद को एक मौका और दीजिए, शायद
कि यहाँ के पैसे को भी अपने हराम खर्चियों पर कुर्बान कर दे और उस दुनिया में अपने लिए और मेरे लिए साहब का सबब बन जाए। मेरी बीवी और बच्चे से ज्यादा सादा लोही वाली गुफ्तगू ना करो। महमूद ने जलील की बेटी पर पैसा लुटा दिया। तुम्हारा चाचा है मगर मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं सिर्फ तुम्हें कह रहा हूँ दीना, कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरती कि मैंने उसके लिए ये दुआ न की हो। खुदा उसे एक रोटी अता फरमाए, वो भी सिर्फ उसी के फायदे के लिए, खुदा की कसम, क्योंकि इसमें मालूमता का साविया है ही नहीं। खुदा उठा ले ऐसे बाप को जो अपनी औलाद के लिए ऐसी दुआ करने पर मजबूर हो।
ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको दुआ करने की। मैं ही गलत थी, मुझे ये मालूम नहीं था कि माजरा क्या है, मगर मुझे ये पता था कि मुझसे गलती हो जाएगी। उठिए उठिए, चलें घर चलें चलें। अगर नहीं उठेंगे तो सरेम आपको चूम लूंगी, बता रही हूँ।
उस हरे दरवाजे पर भी चार दे देना, उसमें चार हिस्से हैं, और मुनीजा साहिबा को भूल मत जाना।
जी मुझे याद है।
भाई साहब उन्हें ढंग से रखिएगा, कहीं गिर ना जाए। बेटा इस नहुसत को मेरी नजरों के सामने से हटा लो जल्दी से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसे थैली में फेंक दो ना।
इन खुदा के बंदों की इज्जत दे दी तुमने।
अभी लाती हूँ, लाती हूँ।
हाजी साहब अब काफी है, मुझे डर है कि रास्ते में गिर ना जाएं। अभी अगली दफा ले जाऊंगा, आप सिर्फ मुझे दुकान की चाबी दे दें, अगर आप नहीं आए तो बाकी का मैं खुद ले जाऊंगा।
अरे तो बता देते, एक गाड़ी ले लेता बंदे खुदा, इस तरह तो शाम हो जाएगी।
फोन उठाना, आप क्या सिर्फ दीना और दुकान से ही मुतालिक है क्या?
मुझ में इसकी हिस नहीं।
हेलो, अगर इस्तखारा करवाना है तो बाद में फोन कीजिएगा। माफ कीजिएगा आप, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपको पहचान ना सकी। तबीयत कैसी है? शुक्रिया आसिया साहिबा। जी हाँ जी हाँ जी जी, आसिया साहिबा, जावेद रियान साहब ठीक है?
जो के तरफ
जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। जी जी, हाजी साहब मौजूद है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
कौन सा जावेद रियान? आसिया कौन है?
आसिया साहिबा तुम्हारी ताई है ना? हाय, फिर मुझसे गलती हो गई, मैंने उनका नाम गलत ले लिया।
अपनी रिहाइश का बंदोबस्त सही तरह से कर सके और वो आराम की जिंदगी गुजार सके।
मैं क्या करूं हाजी साहब?
जो है उसके खुदा की पनाह तुम्हारे करतूत से।
ये होता है कि मकानात की बुनियाद में।
अस्सलाम वालेकुम। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह किया जाना चाहिए। आप कैसी हैं? भाई ठीक हैं?
और जल्जले से महफूज रखने के लिए
आपका ममनून हूँ कि आपने हमें याद किया। महमूद ने मुझे कुछ नहीं बताया।
तंग करने का मकसद सिर्फ एक अमरे खैर था हादी साहब। आज एक साल होने को आ रहा है, मैंने आपकी पोती को नहीं देखा, मैं उसे देखना चाहती थी। उसकी पढ़ाई भी खत्म हो रही है, तो क्या उसके बाद शादी का इरादा रखती है या नहीं? कोई रिश्ता आया है? बात पक्की हुई या नहीं?
हो, वैसे रिश्ते तो उसके लिए बहुत आए हैं, लेकिन हमेशा ही उसकी पढ़ाई उसका बहाना हुआ करती है। अब हुआ क्या है?
किसकी बात कर रही हैं? दीना की?
जी, आपके बेटे के बारे में। मैंने महमूद और दीना से सुना था कि वो शायद अपने वालिद से अलहदा होकर एक अलहदा दफ्तर भी खोलना चाहता था। तफसील का तो पता नहीं, मैं इंशाल्लाह फुर्सत मिलते ही उससे बात करके आपको बताता हूँ।
रामीन,
मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है हाजी साहब। मेरा मकसद रामीन नहीं था, मैं शाहीन के बारे में बात कर रही थी, मेरा छोटा बेटा।
अम्मी जी, उनसे कहें कि पापा ने कहा है, पापा ने कहा है।
और फिर कल उसने खुद दीना साहिबा से ये सुना है कि जब तक वो मिल नहीं जाता जिसकी तलाश में है, तब तक वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती है।
अच्छा, तो शाहीन साहब की बात कर रही हैं।
शाहीन?
अब मैं क्या कहूं? वैसे मैं बता रहा हूं ना कि मुझे नहीं मालूम। आप इजाजत दीजिए, मैं खुद इससे बात करता हूं कि उसने क्या कहा है, क्या सुना है। मैं जरूर फोन करूंगा आपको। जी जी नहीं, मैं हरगिज नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया, जरूर दुआ करूंगा मैं। भाई और दीगर घर वालों को मेरा सलाम कहिएगा। आप सलामत रहें। अच्छा, खुदा हाफिज।
बिलाखिर शाहीन की बात की है रामिन की?
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
कुछ नहीं, वैसे असल बात तो यह है कि 100 साल की राह को एक दिन में तय कर लेगी और फिर सारी जिंदगी मेरे और आपके 1000-2000 की मोहताज नहीं रहेगी वो। लेकिन बशर्ते कि पगली अपने बख्त को ठोकर ना मारे।
हाजी, क्या रिश्ते के लिए सब लोग एक साथ आएंगे? खुदाया, मेरी बातों का तो जवाब ही नहीं देते।
मैंने कहा था कि उनसे कहें कि बाबा ने ये चाहा है और आप हैं कि इधर उधर के लिहाज में लगी हुई हैं और रमजान और रोजे की बातें कर रही हैं। मैंने इस तरह बात करने के लिए नहीं कहा था। उनसे कहो कि बाबा इस मामले में शामिल है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल जाए तो यूं बात नहीं करेंगे।
लगता है तुम कुछ ज्यादा ही इन बातों से मुतमईन।
क्यों मुतमईन ना होगा, आखिर इतना हसीन और दिलकश लड़का हूँ।
और तालीमी सनद?
अब मेरी जान छोड़िए इस मौजू पे अम्मी जान, मुझे सनद की क्या जरूरत है? और वैसे भी कॉलेजों में पास होने वालों में लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है, पता है क्यों? क्या लगता है कि वो दिल से पढ़ती है? जी नहीं, मेरी माँ लड़की जात इसलिए पढ़ती है ताकि अपना महर ज्यादा से ज्यादा लिखवा सके।
1000 दफा तुम्हें कह चुकी हूँ कि तमीज से बात किया करो और इतना मत हिला करो।
मामा,
जानते हो क्यों मैंने तुम्हारे कहते ही फोन कर दिया? ताकि ये मसला मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहे और तुम्हारे बाप तक ना पहुँचे। अगर मेरी राय सुनना चाहते हो तो मेरी नजर में तुम्हारी शादी तुम्हारे चचा की तरबियत याफ्ता लड़की से करना बिल्कुल एक गुलाब के फूल की शाख को खरबूजे के पौधे से जोड़ने के बराबर है। अगर तुम्हारे बाबा को ये पता चले कि तुम शादी करना चाहते हो तो वो ये देखेंगे कि लड़की किसी मेजर, कर्नल या अमीर ताजिर की बेटी है।
वैसे माफ कीजिएगा अम्मी जान, आपको बुरा न लग जाए, अगर मेरी जगह आपका वो हसीन लाडला बेटा होता तब भी आप क्या इसी तरह बात करती?
अपना बताओ, अगर तुम अपने बाप से मुतमईन होते तो क्या तुम अपनी बीमार माँ का सहारा लेने आते?
ठीक है, हमारी गली में भी शादियाँ होती हैं अम्मी, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कौन गुलाब का फूल है और कौन खरबूजे की शाख। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं।
शाहीन, बाबा कमिटी में तुम्हें ढूंढ रहे थे।
अरे वाह, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी ऐसी ही हरकतें करते हो, अपने कामों के बहाने कंपनी से निकलते हो और घर आ जाते हो। शाबाश। खैर, सब आपको एक नया सूट लेना होगा, पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए दीना का हाथ मांग ले तो फौरन फोन लगा लिया उन्होंने। हाय, मैं कुर्बान जाऊं।
अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है भाई।
मामा, बात क्या है?
ठीक 1 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक है, तुमने अपने दफ्तर का बहाना कर दिया और उसको मौका मिल गया। किस लिए हंस रहे हो?
आपको चाहता हूं ना भाई, इसलिए हंस रहा हूं।
अकरम साहिबा, बाकी गोश्त को।
दीना, कल को ये मत कहना कि चाचा ने तुम्हें बताया नहीं था। जरा सा मायूब है मगर लड़का अच्छा है। अभी अंदर जाओगी तो बाज लोग तुम्हें उल्टी सीधी बातें करेंगे, मगर तुम उससे एक अच्छी और नेक ईमानदार औलाद पैदा कर सकती हो, बशर्ते कि तुम खुद फैसला करो और जो ठोकर दुनिया ने मेरे बख्त पर लगाई है तुम खुद अपने नसीब पर मत लगाना। बाकी तुम समझदार हो, मुझे जाना होगा, मुझे काम है।
चाचा, क्या ये बिन सहरी के रोजे के असरात हैं या?
तुम्हें जो समझना है समझो, मेरा काम बताना था।
बीना, अरे तुम कहाँ हो लड़की? प्यारी दुल्हन, तुम्हें पता है जब तुम बाहर थी किसका फोन आया था और उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है? मेरे ख्याल से ये नहुसतें निकाली है तो फायदा हुआ है।
कौन?
इस टुकड़े टुकड़े हुए की बात कर रही हो? जाओ हाजी साहब के पास, वो खुद तुम्हें सारी तफसील बताएंगे। मैं इसे मोहल्ले में बांट के आती हूँ। मगर दीना मेरी जान, देखो मैंने तो लड़के को नहीं देखा, मगर अपनी मनमानियों से अपने बख्त को मत ठुकरा देना।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम।
वालेकुम सलाम। खबर मिल गई आपको अपने मनचाहे शख्स का इंतजार करने वाली मोहतरमा?
दादा जान, अगर मैंने आपको ये बातें नहीं बताई तो सिर्फ इसलिए था कि आप अपने उस बेवकूफ भतीजे से नाराज होकर उदास ना हो जाएं। हम यूं ही एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ रहे थे कि अचानक उस लड़के ने पढ़ाई और शादी का मौजू छेड़ दिया। मैंने सोचा कि ऐसा क्या बोलूं कि रोजे में ना ही झूठ हो और ना ही खुदा को बुरा लग जाए। मैंने कहा कि जब तक वो नहीं मिल जाता जिससे मैं ढूंढ रही हूँ, जब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी। वो साहब भागे भागे गए और अपनी माँ को कह दिया कि मेरी पढ़ाई खत्म हो रही है। अब उसकी माँ ने क्या कहा?
बहुत अहम है तुम्हारे लिए ये बात।
जी हाँ।
कहा कि वो तुम्हारी हसीन और जमील पोती। तुम इतनी बड़ी नाक वाली हो तो जाने दो इस बात को।
अरे आप मुंह क्यों बना रहे हैं दादा जान? अब असली बात क्या की उसकी माँ ने?
मैंने कहा ना छोड़ दो उससे। तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती थोड़ा सा, जो उस लड़के से खड़े होकर इतनी बात कर ली।
एक बात तो बताइए, अब जब आपको मेरा जवाब मालूम ही था तो फिर आपने बेचारी उसकी माँ को मेरे जवाब के आसरे पे क्यों रखा? ताकि मेरा नाम डाल सके, है ना?
मुझे देर से समझ में आया कि शाहीन की बात हो रही है, फिर अपनी बात वापस लेना मुनासिब नहीं लगा।
एक बात मुझे बताइए, क्या अगर रामीन की बात होती तो मुझे वाकईतन बैठ के सोचना पड़ता, है ना?
फिलहाल तो उसकी बात नहीं है ना
दादा जान। मुझे देखिए जरा।
अब झूठ क्यों बोलूं? रामीन को बचपन में उसकी माँ कुरान पढ़वाने लाई थी मेरे पास, उसके बाद उसके बाप ने उसे ड्राइंग वगैरह की क्लास में डाल दिया था।
अच्छा, तो उसके बाद आप उससे बहुत मायूस हो गए थे? तो मुझे बताइए, आप अब तक उसके कुरान पढ़ने पर इतनी सी उम्मीद रखते हैं? हाँ
ठीक है, अब ड्रामेबाजी ना करो मेरे साथ।
जी
अच्छा ना, हाँ सोचा था मैंने उसके बारे में, इंशाल्लाह तुम्हें इससे बेहतर मिलेगा। मोहतरमा को बुरा लग गया?
हाँ वाकई। तो फिर अगर मेरी रामिन साहब से कहीं मुलाकात हो जाए तो मैं उनसे ये कह दूं कि रामिन साहब, अब मुझे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखना, मैं अपने घर पर इंतजार में बैठी हूँ, तो कोई हर्ष तो नहीं है ना?
गलत करोगी अगर ऐसा किया तो।
जी।
एक तो ये भी मिलके नहीं दे रहा।
क्या?
मैंने कहा शायद इसमें इस कुरान की लिखाई मिल जाए, मगर लगता है कि मेरा गुमान ठीक था, यह ज्यादा कदीम कुरान नहीं, 30 साल के अंदर अंदर का है। वैसे मजाक से हट के दीना, उस लड़के को देखता हूं तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि आखिर ऐसे फूल के पास फूलों किसी खुशबू क्यों नहीं।
रामीन,
खुदा गवाह है ये इसलिए नहीं कि मैंने उसे कुरान पढ़ाया था, बल्कि क्योंकि उसकी चढ़पाक है, उसकी जात अच्छी है, हैफ है।
और फिर रामीन में उसकी माँ के असरात ज्यादा है बनिस्बत शाहीन और फरीदा के। गीबत ना हो जाए लेकिन इन दोनों की शक्लो सूरत भी माँ से ज्यादा अपने बाप पे गई है।
जलील भी एक अच्छा इंसान है, बचपन में बहुत सी चीजें उसने मुझे सिखाई थी। जब मैं बाबा से शक्कियात नमाज के मसाइल पूछता था तो वो कहते थे कि जाओ अपने भाई से पूछो। उसकी एक ही बुराई थी कि जब मैं तीर कमान से चिड़िया मारता था तो तो वो सीधा जाके बाबा के हाथों में रख देता था।
वाह वाह, आज तो मेरी आंखें खुल गई हैं आका खलील साहब। तो बताइए, चिड़िया मारने के अलावा और क्या करते थे आप?
हाँ, ये भी नहीं है।
ये सोचिए कि अगर आपके उस नमाज रोजा तर्क करने वाले भतीजे ने मुझे भी अपने जैसा बना लिया तो।
या अल्लाह, हाजी साहब मैं बाकी किताबें लेने आ गया।
अब बात बात पर तुम उस लड़के के मुंह से मत ले आया करो, तुम पर बातें ना बन जाए।
हाँ सच्ची, हाजी साहब ये तोहमत लगा रहे हैं आप मुझ पर।
महमूद साहब, आपकी नजर आपके बाबा की दुकान पे पड़ गई है क्या, जो खून जोश मार रहा है आपका?
मैं तो ये समझ रहा था कि तुम्हारा दिल मेरे हाल पर तरस खा रहा था जो मुझे गाड़ी में बिठा लिया। मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी प्यारी सी भतीजी की खैरियत पूछना चाहते हो।
भाई जान, ऐसे बात मत कीजिए, हमें फिर रोना आ जाएगा। आप बहुत गैरतमंद हो गए। शाबाश।
अरे ओ कमबख्त, कहीं के तुमने क्या समझ रखा है कि हमारे सर पर टोपी पहना के इतनी आसानी के साथ सैयद खलील के घर के दामाद बन जाओगे? हाँ
भाई साहब, हमारे बनने वाले बंधन के बारे में तरह तमीज से बात करो और अपने जरा अल्फाज पर काबू रखो, समझे? ये मत सोचना कि हम दोबारा रिश्तेदार बन रहे हैं, तो तुम्हारे मुंह में जो है वो बोल दो और अपनी औकात दिखा दो।
उतर जाओ, आओ साथ चलते हैं। इज्जत माफ घराने वाले, जिस वक्त तुम वहाँ कान लगा के खड़े हुए थे, हम भी वहाँ मौजूद थे फोन पर। बेचारे मेरे बाबा को गलत फहमी हो गई थी कि रामीन की बात हो रही है और वो दीना का जवाब चाहते थे। और जाहिल, अगर रामीन तुम्हारी जगह होता तो शायद बाबा जवाब देने में।
मेरे सामने रामीन रामीन की तस्बीह मत पढ़ो, मत पढ़ो रामीन की तस्बीह। सुबह से शाम तक उसका नाम सुन सुन कर थक गया हूँ मैं। अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो करो, अगर नहीं करनी तो दफा हो जाओ।
बड़ी खुश फहमी है आपको महाराजा हिंद। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें 1-10 लाख की खबर यूं ही बिला मुआवजा मुफ्त में सुना दूं? हाँ भाई, अंगूर खट्टे हैं मेरे दोस्त।
महमूद, अब ड्रामेबाजी मत दिखाओ, मैंने मान लिया तुम्हारे उन हमेशा के मौजूआत और पैसों के बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जद का वास्ता है पार्टनरशिप के बारे में गुफ्तगू मत करना। तुम्हारी शक्ल की तरह मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है।
कौन से मौजूआत?
हमेशा वाले।
हाँ, लेकिन उन हमेशा के मौजूआत को फिलहाल अभी रहने दो शाहीन साहब, अब पछतावे से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास सिवाय और कोई चारा नहीं है कि तुम अपने घर में एक कोना पकड़ के बैठ जाओ, यहाँ तक कि मेरे बाबा तुम्हें इनकार का जवाब सुना दे। और दीना से पूछे बगैर अपना जवाब तुम्हारे हथेली पे रख दे फड़फड़ाते कबूतर।
दफा हो जाओ यहाँ से, जो कुछ कहा है वो तुम खुद होगे। अरे ये हरकतें मत करो, कहीं पागल खाने वाले तुम्हें उठा के ना ले जाएं। अगर ये समझते हो कि इन हरकतों से तुम हमारे काम खराब कर सकते हो तो फिर हमें अंधा समझ रखा है तुमने। देखिए जनाब, इन बातों से हम बिल्कुल बरी हैं। मेरे पास ऐसे नमूने पहले भी थे। चाचा एक मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं तो मेरे इंतजार करना, मैं अभी आया।
अब क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दीना साहिबा, कैसे हैं?
ठीक।
सुना है कल से आप अपनी दुकान खोल रहे हैं?
इंशाल्लाह।
मैंने दीना साहिबा से भी कहा है अगर कोई काम हो तो मैं आपके बेटों की तरह हूँ, मैं तो अजनबियों के लिए काम कर देता हूँ। आप दीना साहिबा तो मेरे अपने
हैं। फिलहाल कोई काम नहीं,
मैं सिर्फ दुकान की बात नहीं कर रहा। आपको अगर कहीं जाना भी होगा तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर
हूँ। हमें कहीं नहीं जाना, अगर जाना हुआ तो जरूर
कुर्बान जाऊँ आपसे। चाचा जान, सिर्फ इतना पूछना था, उस मौजू पर दीना साहिबा से बात की आपने?
माफ कीजिएगा, मैं चलती हूँ ताकि आप सुकून से बात कर सकें।
नहीं मोहतरमा, मुझे कोई खास बात नहीं करनी थी।
क्या मुझे उससे बात छुपानी थी?
नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आप दुकान में मसरूफ थे तो
यार। मैं उसे कह चुका हूँ, तू बेफिक्र रहो।
अच्छा, चाचा क्या सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उसने क्या कहा? मेरा मतलब यह है कि मैं बाबा के लिए पूछ रहा था, मैंने इस मामले को बाबा के गोश गुजार कर दिया है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। सच तो यह है कि बाबा काफ़ी अरसे से इस इंतजार में हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और अपनी ज़िंदगी शुरू करूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह मसला जितना मेरे लिए अहम है उतना ही मेरे बाबा के लिए भी अहम है।
देखो शाही, तुम्हारे बाबा बखूबी जानते हैं कि मैं दीना को कितनी अहमियत देता हूँ। देखो, तुम उसे याद दिला दो कि मेरी पोती ना तो मेरा लिबास है कि मैं एक ही दिन में उसके लिए फैसला कर लूँ, और ना ही मेरी बच्ची।
अरे नहीं चाचा जान, मेरा ये मकसद नहीं।
देखो, अगर तुम्हें फौरी जवाब चाहिए तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी हथेली पर जवाब रख देता हूँ। जल्दी मत करो, और जरा तसल्ली कर लो कि आया ये शादी तुम्हारे और थीना के हक में बेहतर है भी या नहीं।
लेकिन मैंने बाबा को बता दिया है।
देखो बेटा शाहीन, उनकी राय मेरे लिए भी अहम है। मुझे और दीना को इस बात पर हंसी आती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें जल्द से जल्द पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बेटा ये जान लो, अगर दीना हाँ भी कर दे तभी मुझे इस्तखारा देखना होगा। अपने बाबा को मेरे सलाम कहना।
इस्तखारा देखना होगा, नाप लिया उसे।
वुजू है तुम्हारा?
जी हाँ।
तुम्हें कुछ समझ में आया?
आप कह रहे थे कि लड़की के बाप का नाम की उम्र से नाजिमी है।
देखो क्या बाकी इस शीशे के पीछे रख सकते हो
की उम्र से नाजिमी,
तो इसका नाम भी है।
ये रहा। लेकिन दादा जान, ये बाज़ लोग कुरान के पीछे शहादतें और गवाही क्यों लिखते हैं कि ये इंसान की हिदायत के लिए है, वो भी जबकि ये आयत खुद उस कुरान में मौजूद है।
तो जाहिर है इस कुरान में एक अलग हिकमत है।
फिर वही बातें कर रहे हैं आप। अब इस कुरान की आयतें और सूरतें तरतीब नजूल के मुताबिक हैं। क्या ये इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक से शुरू हुआ है?
मैंने बताया था ना कि जो शख्स इसे लेकर आया था मेरे सर घुमाने तक जा चुका था।
इस तरह से आके अचानक गायब हो जाना हमारी जबानी कलामी मजहबी तारीख में है, मगर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगला अपना फोन नंबर छोड़ के गया हो।
खुदा की पनाह, ये कब कहा मैंने कि वो खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था जो मेरे मजाक उड़ा रही हो?
दादा जान।
दादा जान क्या? अरे बराकत, इत्तेफाक से अगर उसके परेशान होने का पूछो तो वो भी आम सा था।
लेकिन जब वो आपकी दुकान से आया था तो एक कील और हथौड़ी आपके हाथ में थी।
सिर्फ यही नहीं था दीना, गोया इस किताब की मरम्मत को मेरे जिम्मे लगा कर गया है। मुझे इतनी तो तसल्ली है कि मेरे ख्वाब में बनाने के उनसर की ताबीर शायद इसी कुरान की मरम्मत में हो, और ये मरम्मत ही शायद कुरान को दूसरी तरह से पढ़ने की ताबीर भी हो।
पता है क्या, मुझे हमेशा दुनिया की दो चीजों पर हैरत होती है। एक तो आप जैसे अहले दिल पर जो कि जाहिरी चीजों पर दिल खुश कर लेते हैं, और एक मेरी उस्तानी और मेरी तरह के अकलमंदों पर जो आप लोगों की पाक नियतों पर भरोसा करते हैं।
मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, पहले तो मुझे लगता था कि ना तो इसमें नक्काश और सहाफ का नाम है और ना ही खताट और हुस्नकारी करने वाले का नाम है।
ठीक है,
ये देखो, यहाँ देखो,
सैयद, कितना बारीक है, सैयद अली अकबर नक्श, सन है 1372,
जमादिस्सानी यानी तकरीबन अब से 40-50 साल पहले। अब यहाँ देखो, बंदे खुदा मीर्जा सफर अली वर्क चोड़ने वाला।
अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसके सफात का काम और नक्शो निगार आप लोगों ने किए हैं?
नहीं नहीं, सफर अली वर्क जोड़ने वाला कोई वर्क फरोश नहीं था, मैं कोई 8-9 साल का था कि ये बाबा की दुकान पर आके तुर्की और फारसी जबान में बात करता था और कहता था कि वो चारपाई ले आओ, मैं इस पर बैठ जाऊं, कहीं मेरी बिनाई की कमजोरी के बायस में गिर न जाऊं और मेरा कत्ल तुम लोगों के जिम्मे ना आ जाए।
तो वो आपके बाबा के जानने वालों में से था?
रजा कुली खान के दौर में ये भी साफ़त का काम करता था। मैं अब तो तुम्हारे लिए कसम खाने के लिए तैयार हूं, ये कुरान वही आईना है जो मेरे वालिद साहब ने मुझे ख्वाब में दिया था। एक ताबीर रह गई है, वो मेरे हाथों की जंजीर है। खुदा ने चाहा तो इस किताब इलाही की मरम्मत की बरकत से इंशाल्लाह मेरी दुआएं पूरी हो जाएंगी, और इस बेकार दुनिया की जंजीरें भी मेरे हाथों से खुल जाएंगी।
बेटा जरा ये बताना कि जावेदियान साहब का दफ्तर कहां पर है?
सीधा जाके उस तरफ मुड़ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम।
मैं अपना काम पूरा करूंगा, और अगर नसीब में हुआ कि इस किताब की हिकमत को समझ सकूं तो देते वक्त इसके मालिक से कुछ सवाल जवाब करूंगा।
दादा जान,
मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। ये किताब इस कदर अजीब व गरीब है कि बिल यकीन इसके अपने ही कुछ हालात होंगे, वो हालात जो इसके खत्तात और इसकी नजर न्याज के बायस जाहिर होते हैं।
ये कुरान कोई अजीबो गरीब कुरान नहीं है दादा जान।
अब तुम मुझ पे हंसो, ऐसे वाकयात कम नहीं गुजरे। मरहूम तबरुसी जैसे लोग कम नहीं गुजरे कि जब उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया तो अपनी कब्र में ये मन्नत मानते हैं कि अगर इस मुसीबत से निजात मिल गई तो तफसीर मजमूल बयान लिखेंगे।
बेशक आप इसकी मरम्मत भी कीजिए और आपको जो मन्नत और दुआ मांगनी है वो भी मान ले, लेकिन इस कुरान का दूसरे कुरानों में से कोई फर्क नहीं।
अगर कोई फर्क न होता तो इसके आखिर के दस्तखत क्या हैं? मेरे वालिद साहब पहले से मुझे इसकी मरम्मत और सहाफत की ताकीद नहीं करते। मैं आज बता दूं कि मैं क्या करना चाहता हूं।
दादा जान,
इंशाल्लाह मालिक ने हिम्मत दी तो मैं अपना तमाम फन और महारतें जो मेरे बाबा ने मुझे सिखाई थी वो इस किताब पर लगा दूंगा, ताकि अगले 30 साल के बाद भी अगर कोई इस किताब को देखे तो इस किताब के बेनाम और निशान साहब के लिए मगफिरत की दुआ करे। तुम ऐसा मुंह बना के मुझे क्या जाहिर करना चाहती हो?
कुछ नहीं, आप अपनी तकरीर पूरी कीजिए कुरान के जाहिर के हुस्न नगारिश के हवाले से।
इस कुरान के जाहिर की हिफाजत भी बिल्कुल इसके बातिन की तरह है।
दादा जान मत कीजिए ऐसी बातें, हम उस दौर में रह रहे हैं कि जिसमें लोग कुरान को सोने से लिखते हैं और बयान युकात की आयत लिखते हैं और 7-8 कार्टन को सिर्फ ट्रॉली के जरिए इधर उधर ले जाते हैं। अब ये ना कहिए मुझे कि कुरान का बातिन इंसान के इधर और उधर रह जाता है। जी नहीं, सिर्फ इनके दिल की तसल्ली होती है। तफ़सीरुल बयान जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इसे दोबारा सजा सवार के छापा जाए और फिर सिर्फ उन्हीं कुतुब खानों की धूल मिट्टी में रहे तो क्या फायदा? कुछ नहीं है, यहाँ तक कि जाहिर भी नहीं है।
क्या तुम्हारा नाउम्मीद करने वाला दर्स खत्म हो गया? तुम यहाँ बैठकर अपने आगे आने वाले 50-60 साल को देख रही हो और मैं भी यही कहूंगा कि खुदा तुम्हें वाकईतन इसकी तौफीक भी अता करे कि तुम इसके बातिन की बका के लिए कुछ करो। मैं अगर अपने 2 दिन पीछे देखूं तो नजर आता है कि मैंने अपने 50-60 साल गुजार दिए हैं, मगर मुझे इतना मालूम है कि इस अरसे में 1 घंटा भी खुदा की लानत का सवाल नहीं था।
ठीक है, मगर अपनी मरम्मत के काम की बुलंदी के लिए और अपने हाथों की जंजीरों को जबरदस्ती खोलने के लिए इस कुरान को एक अजीब अगर कुरान मत बनाइए।
जबरदस्ती
का लफ्ज यूं ही मेरे मुंह से निकल गया।
एक बात बताओ, क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो ताकि मुझे इस शिशुपन से निकालो या मुझसे खेलना चाहती हो? ओ खुदा, तुम्हें किसी भेड़िए के नसीब में न डाले।
मैं जो भी हूँ मगर चोर नहीं हूँ।
अरे जाओ यहाँ से, तुम होते कौन हो?
तुमने समझ क्या रखा है मुझे?
तुम्हारा खानदान होगा बेगैरत।
बेगैरत? मैं बेगैरत के बच्चे?
छोड़ो मुझे।
अरे लोगो सुनो,
ये कौन है?
ये दुकान है चोरी की,
बहादुरी।
इसमें नमाज कबूल नहीं।
छोड़ो,
इसके हराम खोर बाप ने मेरी 30 अरबों वाली दुकान मुझसे लेके ये मार्केट बनाई
है। शर्माने चाहिए तुम्हें, बाहर निकलो यहाँ से।
बेशर्म हो, हराम से कमाए भी मार्केट के अंदर बैठे हो।